नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और शुक्रवार तक चलेगा। ये सत्र पूरी तरह से ई विधानसभा में होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा केंद्र का लोकार्पण किया। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में 44वें व्यापारी महासम्मेलन का उद्घाटन हुआ और दिल्ली पुलिस ने 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। दिल्ली सचिवालय के एक पत्र में बताया गया कि दिल्ली विधानसभा का तीसरा सत्र 4 अगस्त दोपहर 2 बजे से शुरू होगा और ये 8 अगस्त तक चलेगा। दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद ये तीसरा सत्र होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्र की महत्वपूर्णता पर कहा कि ये राजधानी के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखेगा, क्योंकि इस बार विधानसभा पूरी तरह ई विधानसभा के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने रेखांकित किया कि इतने कम समय में विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सदन के सभी कार्य डिजिटल माध्यम से होंगे, जो नीति निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को नई ऊंचाई देंगे। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में फीस निर्धारण विधेयक समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मॉनसून सत्र में शहरवासियों की सभी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून बनेंगे।
विधानसभा के सत्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को आश्वस्त करता हूं कि उनके सभी कंसर्न्स को विधानसभा में डिलीबरेट किया जाएगा और उनके लिए उपयुक्त कानून, उनके हितों के रक्षा के लिए कानून जरूर बनेगा।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नेवा का एक ट्रायल रन भी आयोजित हुआ, जिससे सभी विधायक डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे। कल से प्रारंभ होने वाला आगामी विधानसभा सत्र पूरी तरह डिजिटल और सौर ऊर्जा से संचालित होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सेवा और सुशासन के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये जनसेवा केंद्र आम जनता की समस्याओं के समाधान, केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और जरूरतमंदों तक त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में जनता की आवाज प्रत्येक मंच तक पहुंचाई जाए और उनकी जरूरतों तथा मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल को पूरा करने में भाजपा के सभी विधायक सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, जमीन पे काम करते हैं, लोगों के साथ मिलके उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार और उस सरकार के माध्यम से जनता के काम लगातार हो रहे हैं। जनता को विश्वास है कि दिल्ली में अब काम होने शुरू होंगे, दिल्ली का विकास होगा।
इस अवसर पर नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और स्थानीय विधायक शिखा राय भी उपस्थित रहीं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में 44वें व्यापारी महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के लिए जीएसटी सहित कई बड़े सुधार किए हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी से संबंधित किसी भी सुधार और सरलीकरण के लिए सरकार हमेशा तैयार है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और देश के व्यापारियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है।
मोदी जी की सरकार आने के बाद जो एक सबसे बड़ा रिफॉर्म व्यापारियों के लिए हुआ वो वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी का हुआ, और मैं व्यापारियों को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है, उसमें हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि महाविद्यालय युवाओं को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार रहने और आगे के जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री सूद ने आज धौलाकुआं के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के 66वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री ने बताया कि कॉलेज जीवन के 3 वर्ष ऐसे होते हैं जब विद्यार्थी जीवन को खुलकर जीता है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जीवन में कई जिम्मेदारियां आती है, इसलिए छात्रों को अभी से सोचने की जरूरत है कि अपने कॉलेज, समाज और देश को क्या योगदान दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रशंसा करते हुए श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार इस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में जुटी है, जिससे समाज और छात्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।
सारे प्रशासन ने इस कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यहाँ के छात्र अपनी भूमिका अदा करते समय देश और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं।
श्री सूद ने बल दिया कि भारत के एक विकसित राष्ट्र और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में युवाओं, छात्रों तथा शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
स्वदेशी सामानों के खरीद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के नेतृत्व में 10 अगस्त से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। चांदनी चौक से भाजपा सांसद और परिसंघ के सचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि 48,000 व्यापारी संगठनों के माध्यम से ये संदेश विभिन्न विक्रेताओं और ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। नई दिल्ली में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री खंडेलवाल ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी नेताओं ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील को मजबूत और व्यापक समर्थन देने का संकल्प लिया है।
आज दिल्ली में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तत्वाधान में देश के 26 राज्यों के 150 से अधिक व्यापारी नेताओं ने ये शपथ ली है कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अपील को अपना बड़ा और व्यापक समर्थन देते हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुष मंत्रालय से परामर्श के बाद आयुर्वेदिक आहार की एक सूची जारी की है। इससे खानपान को लेकर भारत के सदियों पुराने ज्ञान को मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों दोनों में विश्वास बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक आहार उत्पाद तैयार करने के लिए कारोबारियों को भरोसेमंद संदर्भ सामग्री भी मिल सकेगी। आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोगों से दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ के लिए दैनिक जीवन में आयुर्वेद आहार को सम्मिलित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद आहार न केवल शरीर को पोषण देते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन और समग्र स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा देते हैं। इस पहल से खाद्य उद्योग जगत से जुड़े पक्षों के लिए नियामक स्पष्टता बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद आधारित पोषण को व्यापक स्वीकृति मिल सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र विकासपुरी के रनहौला गांव में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। डॉक्टर सिंह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया और नागरिकों से वृक्षारोपण को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की। दिल्ली को कूड़े से आजादी एक विशेष अभियान है जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने ड्रोन के अतिरिक्त पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित विमान प्रणाली, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और विमान से पैरा जंपिंग आदि को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने बताया कि ये निर्णय सार्वजनिक सुरक्षा, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए संभावित खतरों को देखते हुए लिया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रूपये कर दिया गया है। बीएलओ की प्रोत्साहन राशि भी 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रूपये कर दी गई है। उधर बीएलओ पर्यवेक्षकों को अब सालाना 12,000 रूपये की जगह 18,000 रूपये मिलेंगे। अब पहली बार निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को भी मानदेय मिलेगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 30,000 तथा सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को 25,000 रूपये दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बिहार में गहन पुनरीक्षण कार्य से जुड़े बीएलओ के लिए 6,000 रूपये की विशेष प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज मौसम साफ रहा, पर लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री कम 34.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री कम 24.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री, दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और शुक्रवार तक चलेगा। ये सत्र पूरी तरह से ई विधानसभा में होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में 500 किलोवाट के क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा केंद्र का लोकार्पण किया। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में 44वें व्यापारी महासम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और दिल्ली पुलिस ने 16 अगस्त तक राजधानी में ड्रोन जैसे हवाई उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।